नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ, और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सचिन शंकर। सचिन, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत।
धन्यवाद अतहर।
शुरूआत मुख्य समाचारों से। आईपीएल क्रिकेट में इस समय चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। आज के पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हराया। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट के 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 44 रन से जीता। और तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। शुरूआत आईपीएल क्रिकेट से, और आईपीएल क्रिकेट में आज का दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इस समय चेन्नई में खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 12वें ओवर में 1 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। सचिन, यहीं से अपनी चर्चा का हम आगाज करना चाहेंगे, चूंकि इस मैच में टॉस की चर्चा के साथ हम बात की शुरुआत करेंगे, क्योंकि आज हैदराबाद ने टॉस जीता और चेन्नई को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया। आपको क्या लगता है, ये फैसला दुरुस्त है?
नहीं, देखिए, अभी जो भी मैचेस चल रहे हैं था, हम सब देख रहे हैं कि सब हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं
जी।
तो ऐसे में हो सकता है कि उनको ये लग रहा हो कि अपने मैदान पे खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स, अगर वो एक मॉडरेट टोटल पे उनको रोक लेते हैं उनके गेंदबाज, तो उनके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि चेस करने में अभी पिछले मैचों में भी देखने में आया कि सनराइजर्स हैदराबाद ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है मैच की, वो काफी ठीक ठाक लग रहा है अभी चेन्नई का प्रदर्शन, क्योंकि आप ये देखिए, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान, जिनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी इस टीम की घूमती है, वो अर्धशतक पूरा कर चुके हैं, और डेरिल मिचेल भी जो है वो अर्धशतक के करीब पहुंचने वाले हैं, 43 रन पे अभी वो खेल रहे हैं जैसा कि मैं देख पा रहा हूं।
और टोटल का अगर हम अनुमान लगाएं तो टारगेटेड अगर हम स्कोर की बात करें तो 220-230 के आसपास रहने की आपको संभावना?
इतना मुझे लगता है कि इनको बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बीच बीच में जो हार इनको झेलनी पड़ी है, मुझे लगता है उसको उससे सबक लेते हुए इनके बल्लेबाजों को जो एक निरंतरता नहीं दिख रही थी, उससे वो सबक लेंगे आज और संभल के खेलेंगे। और अभी तक का जो दिख रहा है कि भाई अजिंक्य रहाणे बहुत जल्दी चले गए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी हुई है दूसरे नंबर पे जो ऋतुराज गायकवाड़ और डेरिल मिशेल के बीच, और ये काफी ठीक ठाक पोजीशन में लग रहे हैं। अगर ऐसे में ये और संभालें टीम को, और बाद में भी इनके पास अभी बल्लेबाजों की एक कतार है तो हम सब जो आप बात कह रहे हैं वहां तक ये पहुंच सकती है टीम, बिल्कुल ऐसा लग रहा है।
चेन्नई में ये मुकाबला खेला जा रहा है, तो क्या चेन्नई की टीम को होम ग्राउंड का फायदा मिलने वाला है?
ये तो हर होम टीम के साथ होता ही है, उनके अपने समर्थक होते हैं जो भारी संख्या में वहां वो मरते हैं, और जाहिर सी बात है वो अपनी टीम की हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब खेल अच्छा हो जिस टीम का
जी,
वो तो उसका ही, अब इकाना में देखने को मिला था कल की राजस्थान रॉयल्स ने उनको हरा दिया, तो जब 200 के ऊपर का, जबकि उन्होंने भी टोटल किया था, तो अच्छे खेल के आगे तो फिर देखिए प्रशंसक भी क्या कर सकते हैं, जो मैदान में है खेलना उसको है, और हौसला अफजाई बहुत अच्छी चीज होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, लेकिन अंततः तो देखिए खेल ही महत्वपूर्ण है।
हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है,
मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर एक इसका जो है असर होता है, और चेन्नई को माना भी जाता है कि उसके लिए वो एकदम गड़की तरीके से है उसका मैदान, ज्यादातर उसको वहां जीत ही नसीब होती है।
चलिए पहले मैच की चर्चा कर लेते हैं, उससे पहले हम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। अहमदाबाद में खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 9 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 200 रन बनाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मैच जीतने के लिए 201 रन का लक्ष्य दिया, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से विल जैक्स ने 100 रन की शतकीय पारी और विराट कोहली ने 74 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने साई सुदर्शन की नाबाद 84 रन और शाहरुख खान की 58 रन की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 200 रन की चुनौती रखी, जिसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 16 ओवर में ही हासिल कर लिया। कल कोलकाता की ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सचिन, अब हम चर्चा करते हैं इस मैच की। आज के पहले मुकाबले की अगर बात करें तो क्या इस मुकाबले को हम एक तरफा कह सकते हैं इन फेवर ऑफ आरसीबी?
नहीं, बिल्कुल एक तरफा बना दिया उन्होंने। आप ये देखिए कि कोई ऐसा कोई कम नहीं था उनका भी टोटल
जी,
200 रन चेस करने थे, लेकिन जब विराट कोहली ठीक ठाक खेल रहे थे, पहला विकेट उन्होंने गंवा दिया जल्दी, हालांकि वो जल्दी इस सेंस में कि जिस तरीके से इनकी बल्लेबाजी रही, फाफ डु प्लेसी आए 24 रन बना के गए मात्र 12 गेंद पे, उसके उनके आउट होने के बाद विल जैक्स आते हैं और शुरुआत में तो वो धीमा खेले
जी।
मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने थोड़ा सा अपने को संभलने का मौका दिया, जायजा लिया, उसके बाद जो उन्होंने जो आक्रामक पारी खेली है वो काबिले तारीफ है।
तो क्या इस मैच के नायक आप विल जैक्स की सेंचुरी को मानते हैं और या फिर विराट की 74 रन की शानदार पारी?
देखिए, विराट का योगदान कम नहीं है
नहीं।
लेकिन निसंदेह इस मैच के हीरो तो विल जैक्स ही हैं
जी,
क्योंकि आप ये देखिए कि जो 17 गेंद पे 17 रन बनाने के बाद उन्होंने जो अगले रन बनाए वो बहुत तेजी से बनाए,
आक्रामक
बहुत तेजी से बनाए, उसमें चौके छक्कों की बरसात ही हुई है, मतलब गेंदबाज तो पनाह मांगते नजर आए। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो शतक है उनके नाम तो, और दोनों नॉट आउट बल्लेबाज रहे, दोनों जीत जिता के लौटे हैं, जीत दिला के लौटे हैं क्रीज से। तो उस अब हालांकि विराट कोहली की पारी कहीं कोई कमतर नहीं है, और आप ये देखिए कि इस संस्करण में वो 500 रन भी पूरे कर चुके हैं जो, और उन्होंने इस मैच में बहुत तेजी से रन बनाए विराट कोहली ने भी, तो उनके ऊपर एक जो ये आरोप लग रहा था कि ये बहुत धीमा खेल रहे हैं, स्ट्राइक रेट इनकी अच्छी नहीं जा रही है,
वो निराधार साबित
हुए, तो वो उन्होंने उस चीजों को भी मतलब दरकिनार कर दिया और बहुत अच्छी पारी खेली उन्होंने। और आप ये देखिए कि जब एक खिलाड़ी बहुत तेज खेल रहा हो तो दूसरे खिलाड़ी को उसको साथ देना चाहिए, तो वो उसी भूमिका में रहे क्योंकि वो पहले से थे वहां क्रीज पे, तो उन्होंने वो भूमिका बखूबी निभाई, लेकिन रन रेट भी कम नहीं होने दिया। आप अंदाजा लगाइए ना, 4 ओवर रहते आप 200 का टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं, तो 16 गेंदों में तो मालूम नहीं क्या और हो सकता था।
अच्छा सचिन, गुजरात की बात करें तो गुजरात की ओर से साई सुदर्शन ने शानदार 84 रन बनाए, और शाहरुख खान की अगर बात करें तो वो भी 58 रन की उन्होंने भी साहसिक पारी खेली है। तो फिर चूक कहां आप मानते हैं, कहां चूक हुई गुजरात की टीम?
नहीं देखिए, चूक कुछ नहीं हुई है, चूक एक तो ये कह सकते हैं कि उनके मुकाबले ये रन कम रह गए, हालांकि 200 रन बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ठीक ठाक रन है मतलब आप, लेकिन अभी चूंकि पिछले मैच में भी मैच की जब चर्चा कर रहे थे जो अभी तुरंत खेला जा रहा है मौजूदा समय में चेन्नई में, तो मैंने यही कहा था कि एक अच्छा टोटल तो देना ही पड़ेगा और वो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो 200 रन ठीक है लेकिन मैच जिताऊ नहीं रह गया
जी।
तो अब देखिए ना,
इस संस्करण में बहुत अच्छे स्कोर हो,
बहुत अच्छे स्कोर हो रहे हैं सब, मतलब इसके पार ही जा रहे हैं सब। तो अब जब किसी बल्लेबाज का एक दिन भी होता है,
सही,
अब आप विल जैक्स का आज दिन था, वो लगातार नहीं खेल रहे हैं टीम में, लेकिन जब उनको मौका मिला तो उन्होंने ऐसी आपसी पारी खेली कि वो देखने लायक था,
समय जिताऊ पारी कह सकते
हैं, बिल्कुल मैच जिताऊ पारी थी। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो 200 रन तो फिर बहुत फीके पड़ गए, उस हिसाब से तो कम से कम 240 रन इनको स्कोर बोर्ड पर टांगने थे जिससे कि वो बल्लेबाजों पर कुछ दबाव बना।
बिल्कुल, और सचिन गुजरात के लिए तो आज का दिन देखा जाए तो अपना मैदान और अपने समर्थक दर्शक फैक्टर की अगर बात करें तो ये भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ,
ये भी कारगर सिद्ध नहीं हुआ। अपने ही मैदान में खेल रहे थे अहमदाबाद में जो आदरणीय मोदी जी के नाम पे है, लेकिन ये सब रह गया वहां पे देखिए। तो इसलिए वही बात है कि जो खिलाड़ी अगर कोई ऐसा आ गया, अब ये बल्लेबाजों का ही गेम होता जा रहा था, जहां तक आप देखिए ना कि गेंदबाज अब जो है वो पृष्ठभूमि में चले गए हैं, कोई अगर अच्छा प्रदर्शन कर दे रहा है तो वो बहुत ही इक्का दुक्का ही है, अब बल्लेबाजों का ही गेम हो। अब ये 10वां शतक है इस आईपीएल का जो इन्होंने विल जैक्स ने ये लगाया है, तो उस नजरिए से भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छा बल्लेबाजों का प्रदर्शन चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, महिला क्रिकेट की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच महिला क्रिकेट के 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच भारत ने 44 रन से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। आज सिलहट में खेले गए मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के लिए 146 रन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 101 रन ही बना सकी। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 7 विकेट खोकर 145 रन बनाए। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्तमान श्रृंखला का अगला मैच 9 मई को खेला जाएगा। सचिन, महिला T20 की बात करें तो आगाज तो अच्छा है, क्या अंजाम इससे भी अच्छा होगा?
नहीं, निश्चित तौर पे। और देखिए कि हमारा इनका जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। हमने इनसे सिर्फ दो मैच हारे हैं और बाकी सारे मैच हमने जीते हैं। मुझे लगता है 17 या 18 मैच अभी तक T20 में खेले गए दोनों देशों के बीच। और यहां पे भी भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। पूजा वस्त्राकार के साथ रेणुका सिंह ने मिलकर दोनों ने 5 विकेट लिए। शुरुआती विकेट जल्दी गिरा दी, जैसे दबाव बन गया। हालांकि आप ये देखिए कि उनकी कप्तान जो है वो अच्छी निगार सुल्ताना अच्छी पारी खेलने में
बहुत अच्छी पारी खेली।
उन्होंने 48 गेंद में 51 रन बनाई, एक अच्छा उनका प्रयास कहा जाएगा। लेकिन उनको दूसरे छोर से कोई साथ नहीं मिला।
तो क्या उनका ये जो बल्लेबाजी का प्रदर्शन है उसमें निरंतरता की आपको उम्मीद लगती है और इसका फायदा अगले मैच में मिलने की उम्मीद है? क्या बांग्लादेश की टीम कमबैक करेगी?
नहीं, अब करना कोशिश तो करनी ही चाहिए। लेकिन अब इस मैच में जैसे निगार सुल्ताना का प्रदर्शन में देखने को मिला है, तो हो सकता है अगले मैच में कोई और दूसरी बल्लेबाज चमके और शायद निगार उतना अच्छा ना कर पाए। तो यहां जरूरत इस बात की है कि जैसे भारतीय टीम में भी किसी ने बहुत बड़ी पारी नहीं खेली, लेकिन जो भी उनके 30-35-40 रन की जो स्कोर थे 3-4, उससे वो 145 रन पहुंचने में सफल रहे।
बिल्कुल ठीक कहा आपने सचिन। भारत के बल्लेबाजी की अगर बात करें तो एक तरह से संतुलित प्रदर्शन किया है, जहां तक यस्टिका भाटिया की बात है, शेफाली वर्मा की बात है, हरमनप्रीत कौर की बात है जो कि कप्तान है भारतीय टीम की, उन्होंने 30-32 के बीच में स्कोर किया है तीनों ही खिलाड़ियों ने। तो क्या इसको एक संतुलित प्रदर्शन कहा जा सकता है?
भारतीय टीम का प्रदर्शन इस नजरिए से तो संतुलित है कि उन्होंने एक ठीक ठाक स्कोर बनाने में सफल रहे और उनकी गेंदबाजों ने बाद में अच्छा प्रदर्शन किया जिससे कि उनको उन्होंने रोक दिया। और इसमें एक चीज और है कि बांग्लादेश की फील्डर्स ने कुछ खराब प्रदर्शन भी किया जिसका फायदा भारत को मिला। उन्होंने कई कैच छोड़े, कई मिसफील्ड किए जिससे उनको रन मिले। तो एक ये भी एक देखने वाली बात है कि अगर उनके खिलाड़ी ऐसे ही करेंगे तो वो निश्चित तौर पर प्रतिद्वंदी टीम को बढ़त लेने का मौका देंगे।
बात तीरंदाजी की तो चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 8 पदक जीते हैं। रिकर्व पुरुष टीम स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टिकड़ी ने वर्तमान ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह पहला अवसर है जब तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत दर्ज की है। इससे आगामी पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के शामिल होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस बीच महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। उन्हें फाइनल में दक्षिण कोरिया की लिम सिहोन ने पराजित किया। सचिन, भारत के इस प्रदर्शन के बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे?
निश्चित तौर पर ये बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन है क्योंकि दक्षिण कोरिया जो है वो पावर हाउस कहा जाता है उसको आर्चरी का, और उनको हरा के अगर आप गोल्ड मेडल जीत रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 14 साल पहले भी हमने गोल्ड मेडल जीता था लेकिन तब हमारे सामने दक्षिण कोरिया न होकर जापान था। तो इसीलिए ये पहला मौका है जो आपने अर्ज किया जैसा कि ये दक्षिण कोरिया को हराने में हमारी टीम सफल रही है। और ये लड़कों का प्रदर्शन मतलब बहुत सराहनीय है, बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन है।
अच्छा, भारतीय तीरंदाजों के इस प्रदर्शन से क्या हमारे पेरिस ओलंपिक का रास्ता साफ होने की संभावना है?
एक कोटा हमें मिला हुआ है धीरज का, लेकिन जिस तरीके से ये टीम का प्रदर्शन रहा है तो इससे बहुत चांसेस बढ़े हैं।
और अब बात बैडमिंटन की। भारतीय महिला टीम उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। चीन के चेंगदू में खेली जा रही प्रतियोगिता में आज उसने सिंगापुर को 4-1 से हराया। इस पर और जानकारी लेते हैं दीपाली पांडे से।
भारत ग्रुप ए में दूसरे मुकाबले का शुरुआती मैच हार गया। अश्मिता चालिहा पहले सिंगल्स मुकाबले में दुनिया की 18वें नंबर की खिलाड़ी येओ जिया मिन से 15-21, 18-21 से हार गई। बाद में राष्ट्रीय चैंपियन प्रिया कोन जिंगबाम और श्रुति मिश्रा की जोड़ी ने डबल्स मुकाबले में जियो एनहेंग और जिन यूजिया को 21-15, 21-16 से हराकर भारत को वापस ला दिया। ईशानी बरुआ ने दूसरे सिंगल्स में इंसिरा खान को 21-13, 21-16 से हराकर भारत की बढ़त दिलाई। बाद में दूसरे डबल्स मैच में सिमरन सिंघी और ऋतिका ठाकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यी टिंग एलसलाई और जान मिशेल पर 21-8, 21-11 से जीत दर्ज की। जबकि अंतिम गेम में अनमोल खरब ने ली शिन मेगन पर 21-15, 21-13 से जीत दर्ज कर भारत को 4-1 की मजबूत बढ़त दिलाई।
और श्रोता, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सचिन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद अतर।
और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।